यशाया अध्याय 64, यशाया अध्याय 64 पद 1 से लेकर 4 तक। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग जाड़ जखांड को जला देती व जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। वो प्रार्थना करता है कि यहोवा पूर्व काल के सदृश्य प्रकट क्यों नहीं होता है। उस समय उन्होंने तेरी शक्ति और महिमा देखी थी। एहेस्केल की पुस्तक अध्याय 8 में यहोवा रूस की सेना के आक्रमण के विरुद्ध अपने चेहरे के क्रोध का उल्लेख करता है कि वो इसराइल पर आक्रमण करने वाली रूसी सेना का नाश करेगा। उसने कहा, एहेस्केल अध्याय 38 पद 16, और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इसराइल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर एक बार फिर हस्तक्षेप करेगा और यशया भी इसी हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करता है कि पहाड़ उसके प्रताप से कांप उठे, वो वही भय के काम प्रकट करें जो उसने पहले किए थे। पद 4, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करें। हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं। हमें तो सब कुछ होता हुआ दिखना चाहिए। इब्राहिम की तरह हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, इसलिए इस कार्य में परमेश्वर की सहायता करना चाहते हैं। ये हमेशा ही त्रासदी पूर्ण होता है। परमेश्वर की बाट जोने वालों के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया हुआ है? आपको ध्यान होगा कि पौलुस ने भी ऐसा कुछ कुरिन्थियों की पत्री को लिखा था। वो निश्चय ही यशिया के इस गदांश का संदर्भ दे रहा था, पहला कुरिन्थियों 2:9-10 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पौलुस यहां एक सांसारिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति की तुलना कर रहा है। एक सांसारिक मनुष्य आत्मा के विषय कुछ नहीं जानता है, ना ही वो आत्मा की बातों को समझता है। वो आत्मिक विषयों को समझता नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा अंत ग्रहण की जाती है। परंतु वो जो आत्मिक व्यक्ति है, वो सब बातों को समझता है, जबकि उसे कोई नहीं समझाता है। पौलुस सांसारिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में अंतर बताते हुए कहता है, आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। पौलुस ने एफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना की थी कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ की आत्मा प्रदान करे कि वे अपने बुलाहट की आशा को जाने। ओ, यदि आप केवल ये जानते कि परमेश्वर की संतान होने के कारण परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या रखा है, यदि आप उसके राज्य की महिमा को जानते, वो ऐसा अद्भुत है, वो हमारी कल्पना की अभी धारणा और युक्तियों से परे है। जब पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था और उसने इन बातों को सुना था और उसका कुछ अनुभव प्राप्त किया था, जो उसने जाना कि वो इतनी महिमामय है कि उनका मानवीय भाषा में वर्णन किया जाए तो वो अनर्थ होगा। वो ऐसी महिमामय बातें थी कि पौलुस कहता है, ये आवश्यक था कि परमेश्वर मुझे नीच रखने के लिए एक कांटा चुबा दे, अन्यथा मैं इन प्रकाशनों के कारण जो मुझे दिए गए हैं जमीन पर पैर ना रखूं। वो ऐसा अद्भुत था कि यदि परमेश्वर मुझे ना रोकता तो उसी स्वर्ग दर्शन और क्षेत्र में रहने लगता। अतः प्रभु के दर्शन की अधिकता जो महा महिमामय थी, उसमें मुझे मेरी मानवता का स्मरण कराने के लिए ये कांटा उसे चुबाया गया। परंतु पौलुस में जब से एक मनोकामना उत्पन्न हो गई, यहां से प्रस्थान करके वो प्रभु के साथ रहे जो सबसे उत्तम है, ये उसके लिए एक लालसा बन गई। यदि आप केवल यही जानते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। अब परमेश्वर ने इन बातों को हम पर अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करना आरंभ कर दिया है। पौलुस फिर भी उनके लिए प्रार्थना करता है, आपको बुद्धि और समझ की आत्मा प्राप्त हो कि आप जानो कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है। यदि आप केवल ये जान ले कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, तो आप सांसारिक वस्तुओं से संतुष्ट ना होंगे। आप पौलुस के समान संसार को त्यागना चाहेंगे। लोग कहते हैं, आप स्वर्गिक मानसिकता के हैं, आप पृथ्वी के योग्य नहीं। मैं सच कहता हूं, मैंने ऐसे कहने वाले व्यक्ति से भेंट नहीं की है। मेरे विचार में तो हम स्वर्ग की योग्यता के लिए अत्यधिक सांसारिक है। मेरी तो एक ही मनोकामना है कि हम अधिक स्वर्गिक मानसिकता के हो। मेरी इच्छा यही है कि हम उस ओर निहारते रहें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया हुआ है। तब हमारा दृष्टिकोण अधिक अच्छा होगा और हम सांसारिक बातों में जो नाश हो जाएगी अधिक नहीं उलझेंगे, और हम उन बातों में अधिक रुचि लेंगे जो अनंतकालीन है। पौलुस ने कहा, दूसरा कोरिंथी अध्याय 4 पद 18, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हमारी आंखें अदृश्य बातों पर लगी है, आत्मा की बातें परमेश्वर के महिमामय राज्य के बारे में प्रकट की जाती है। ओह, आप इस संसार से जिसमें आप रहते हैं थक चुके हैं और आप पृथ्वी पर नाम मात्र के लिए रहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। अपनी प्रार्थना में वो आगे कहता है, यशाया अध्याय 64 पद 5 और 6, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत काल से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। यशया परमेश्वर के सामने अपनी सफाई पेश नहीं कर रहा है। हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रायः ऐसा ही करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रायः परमेश्वर को समझाने का प्रयास होती है कि हम क्यों ऐसे पतित हैं। हम अपने आप को उचित ठहराना चाहते हैं। आदम ने कहा, प्रभु तूने जो स्त्री मुझे पत्नी बनाकर दी वही समस्या की जड़ है। इस प्रकार हम अपने को उचित बताना चाहते हैं और दोष कहीं और डालते हैं। बाइबल में लिखा है नीति वचन अध्याय 28 पद 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दानियल की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। उसने अपना पाप और अपने लोगों का पाप स्वीकार किया था। प्रभु तूने जो भी किया उसमें तू धर्मी था, दोष हमारा ही है। ये अति महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तब हम नंगा चेहरा और खुले हाथ लेकर उसके पास आए हैं। परमेश्वर मैं अपराधी हूं। हमें परमेश्वर की दया पर निर्भर होना है, ना कि अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को अपराधों में गिराने वाली परिस्थितियों के बारे में समझाना चाहिए। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना में रुचि नहीं रखता है, वो केवल दोष को स्वीकारना चाहता है। परमेश्वर हम गलत हैं, हमने पाप किया है, हमारी धार्मिकता गंदे चित्रों की सी है। मैं मनुष्य को देखता हूं जो अपनी धार्मिकता में जीवन व्यतीत करता है। मैं जैसा चाहता हूं मनुष्य मेरे साथ करे, मैं भी उनके साथ वैसा ही करता हूं। मैं रेड क्रॉस में दान देता हूं, मैं यूनाइटेड फंड में दान देता हूं, मैं प्रति सप्ताह 1 घंटा समाज सेवा में लगाता हूं। मनुष्य अपने आप को इन छोटे छोटे भले कामों द्वारा आवृत करना चाहता है। वे इस दिखावे और भले कामों में प्रदर्शन करते हैं। वे समाचार पत्रों में अपना चित्र छपवाते हैं। परमेश्वर कहता है कि सब काम मैले चित्रे हैं, वे दुर्गंध देते हैं, ये हमारी धार्मिकता के काम। प्रेरित पौलुस ने कहा कि यदि मनुष्य अपने कामों पर या व्यवस्था पर गर्व करे तो मेरे काम तुमसे अधिक है। तुम व्यवस्था पालन द्वारा धर्मी बनना चाहते हो? मैं तुम्हें हरा चुका हूं। मैं यहूदी हूं, मेरा 8वें दिन खतना हुआ, मैं बिन्यामिन के गोत्र से हूं, मैं फरीसी हूं, मैं व्यवस्था का उत्कृष्ट पालक था, परंतु मैंने मसीह यीशु के ज्ञान की उत्कृष्टता में इन समस्त लाभों को हानि माना है और उन्हें कूड़ा समझता हूं। अब यह है कि मैं उसे जानूं और उसमें पाया जाऊं। अब व्यवस्था के अनुसार मेरी धार्मिकता तो मैले चित्रों की सी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में यूहन्ना फिर से देखता है कि वधु अपने वर के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित है। ये उत्तम वस्त्र पवित्र जनों की धार्मिकता है। मैं मसीह यीशु की धार्मिकता से सुसज्जित हूं जिसे परमेश्वर ने मुझ में रोप दिया है, और ये मसीह यीशु में मेरे विश्वास के द्वारा है। पौलुस यही समझाता है, मैंने अपने मैले चित्रे उतार दिए हैं। व्यवस्था के अनुसार जो मेरे लिए लाभ था वो अब कूड़ा है, उसमें दुर्गंध है। मैं मसीह यीशु की उस धार्मिकता में आवृत होना चाहता हूं जो विश्वास के द्वारा मुझे प्राप्त होती है। ये धार्मिकता का चोगा है जो मुझे मसीह से विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। अतः हमारी धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रे के समान है। यशाया अध्याय 64 पद 7 और 8, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। बाइबल में तीन स्थानों पर मिट्टी और कुम्हार की उपमा दी गई है, जो मनुष्य के संबंध में परमेश्वर की महानता का वर्णन करती है। यरमिया और पौलुस भी इसी उपमा का प्रयोग करते हैं। पौलुस भी परमेश्वर की महानता को दर्शनों में इसी उपमा का प्रयोग करते हुए कहता है, क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि वो उसे ऐसा रूप क्यों प्रदान कर रहा है? उसे वो रूप भाता नहीं है? नहीं, मिट्टी को क्या बनना है उसे कोई अधिकार नहीं है। ये सब कुम्हार की इच्छा पर निर्भर करता है, मिट्टी पर उसका पूरा अधिकार है। दूसरी ओर ये अवस्था जान लीजिए कि यदि आप कुम्हार को नहीं जानते हैं तो ये अत्यधिक संकटकालीन स्थिति है, परंतु यदि मैं कुम्हार को जानता हूं तो मैं आश्वस्त हूं कि वो मुझसे जो कुछ भी बनाएगा वो सर्वोत्तम ही होगा। मुझे मेरे कुम्हार पर पूरा पूरा भरोसा है। मुझे यदि यह जानना है कि कुम्हार के मन में मेरे लिए क्या है तो मुझे उसके प्रति पूरा समर्पण करना होगा। अतः तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूं। यशाया अध्याय 64 पद 8 से लेकर 12 तक। हम सबके सब तेरे हाथ के काम है, इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी प्रजा है, देख हम सब तेरी प्रजा है। देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभ्यमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के हेतु भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा